Namaste everyone, Jai Gurudev. First of all, I would like to thank each and everyone for giving us a warm welcome to Wellington. This is my first trip to Wellington. It was absolutely a pleasure to be here. Special thanks to Dupenduji and Daji and everyone here. Thank you very much for such a warm welcome. We feel like we're in India or like family here together. I was asked to tell a few words about Dr. R.K. I think it's very hard for me to give an introduction to such a great person in a few minutes. But I'll try my best and I'll try to be as short as possible because we need to let him to speak. Now, Dr. R.K. Actually is Dr. Varela Sri Ramakrishna. He's originally from Andhra Pradesh. He's an ardent disciple of Param Pooja Gurudev. For the last 25 years ago, under Gurudev's order, he went to South India to spread his message. And if you see each and every nook and corner of Andhra Pradesh, that's the state of India, most of the people are very active regarding the whatever activities. It was all thanks to the guidance and blessings. And also Dr. R.K. also goes to different organizations like the Aravinda Society, Theosophical Society, Ramakrishna Mission, Shirdi Sai, different organizations, and he gives very good talks on different subjects like art of living, science of living, and you can name it and you can talk. So basically, so on behalf of everyone, I would like to request Adane Dr. R.K. to talk on significance of holy and his experiences with holy and his prayers and messages to all. Thank you once again.
So three times Omkar, Guru Pradhana, and once Gayatri Mantra. And if possible, make your backbone straight. If possible, of course, if you don't feel it inconvenient. And see that your both hands are like this, left below and the right above. This is what is known as the Dhyana Mudra. Close your eyes. We chant Omkar three times, Guru Pradhana, and once Gayatri Mantra. तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और कोई भी जो गुरु हो, एक चीज हम सब लोगों को जानना चाहिए कि सभी गुरु जिसको हम आध्यात्मिक गुरु कहते हैं वो हमको जीने की कला सिखाते हैं। आज की जिंदगी में जब हम देखते हैं तो हम जीना भूल गए हैं। तो आध्यात्मिकता का हम एक नया भाषा में बोलना चाहता हूं मैं, इसलिए कि आध्यात्मिकता का तो मतलब ऐसा हो गया जैसे जिंदगी छोड़ के भाग जाओ। जब सब कुछ करना हो गया, जब हम कुछ ना करने की स्थिति में हूं, तब आध्यात्मिकता याद आता है। जबकि आध्यात्मिकता मां के पेट में आने से पहले शुरू होना चाहिए, वो हम लोग भूल गए हैं। तो सबसे पहले यह चीज हमें याद रखें अगर इस क्लास के बाद, कि आध्यात्मिकता वह चीज है जो जिंदगी का आधार है, जो यह बताती है कि जीने की उद्देश्य क्या है, क्यों हम यहां हैं, कैसे यहां आए और कहां जाना है। ये तीन प्रश्न एक ऐसे हैं जो कभी हमारे मन में नहीं आते। शायद मैं ढंग से बता नहीं पाया कि प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है, हमेशा आप ये अपने आप से पूछिए कि हम यहां क्यों हैं, यहां इस समय यहां क्यों हैं, कुछ क्षण बाद कुछ घंटे बाद कहीं और रहते, कुछ महीने बीत जाते हैं, छुट्टियां आती है तो कहीं और चले जाते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन हम क्यों वहां जा रहे हैं, क्यों यहां हैं, क्यों हम फलाने माता पिता के पुत्र हैं या बेटी हैं, क्यों हम फलाने कुटुंब में रहते हैं, फलाने फैमिली के मेंबर हैं, ये प्रश्न कभी हमको उठता ही नहीं। जबकि असली प्रश्न तो ये है कि आप यहां क्यों हैं। तो जहां आप यहां क्यों हैं का प्रश्न आता है, जब यह प्रश्न आपके अंदर आता है तो तुरंत यह प्रश्न आएगा कि आप आ कहां से रहे हैं। निश्चित रूप से तीसरा प्रश्न भी आएगा कि हम जा कहां रहे हैं। और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हमारे पास नहीं है। जबकि संपूर्ण आध्यात्मिकता यह बताती है कि आपको करना क्या है इस जन्म में नहीं, अनेकों जन्मों तक। गीता में बड़े साफ कृष्ण कहते हैं, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। गीता में अर्जुन से जगत गुरु श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जानबूझ के ये पद उपयोग कर रहा हूं जगत गुरु, वो कहते हैं बहूनि में व्यतीतानि, हम लोगों ने कई जन्म बिताए, कई जन्म बिताए, ये पहला जन्म नहीं है जब हम साथ हैं। अब जब मैं ये बात कर रहा हूं तो ये बात हम लोगों के लिए भी जोड़ना चाहिए कि हम लोग भी ये पहली बार नहीं मिल रहे हैं, लगता है कि पहली बार मिल रहे हैं। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म साथ साथ लिए, तान्यहं वेद सर्वाणि, मैं जानता हूं उन सब जन्म कैसे बीते और कहां ले जा रहे हैं। न त्वं वेत्थ परन्तपा, तू नहीं जानता कि तू यहां क्यों है। क्यों ऐसी बात बोलना पड़ी थी कृष्ण को? क्योंकि वो महाभारत की लड़ाई में, शायद आपको मालूम होगा कि अर्जुन अपने युवा अवस्था में थे, भाव समझ रहे ना, अर्जुन अपने युवा अवस्था में थे, तब उनका उम्र 84 साल था, मैं इसलिए बता रहा हूं युवा अवस्था, 84 साल के एज में अर्जुन यंग है, मिडिल एज, नॉट एग्जैक्टली यंग बट मिडिल एज, और श्री कृष्ण 125 साल के थे। वो उम्र सुनते हमको लगता है कि उस समय में लड़ाई लड़ना, उस समय तो पता नहीं हम किस स्थिति में रहेंगे। क्यों ये प्रश्न आया? जब वो 84 साल का अर्जुन महाभारत के युद्ध में खड़ा हुआ तो उसको अचानक लगा मैं ये क्या कर रही गलत काम कर रहा हूं, अपने दादा को, अपने गुरु को, अपने मित्रों को, अपने बंधुओं को मारना हमको, क्या इसीलिए मैं पैदा होता हूं। और वो जगत गुरु को समझाने चलते हैं कि सब गलत है, ये लड़ाई नहीं होना चाहिए, इससे कुल का नाश हो जाएगा, इससे व्यक्तित्वों का नाश हो जाएगा, इससे कुटुंबों का नाश हो जाएगा। तो ये समस्या हम लोगों का नहीं, अर्जुन का भी था कि ये सब क्या हो रहा है, मुझको क्यों खड़ा किया जा रहा है, लड़ो। तब कृष्ण कहते हैं इस स्थिति में तुम इसलिए नहीं हो कि इस जन्म में तुम्हारे कुछ भाई तुमसे तुम्हारी जायदाद छीन लेना चाहते हैं, तुम्हारा राज्य छीन लेना चाहते, इसलिए नहीं। इसकी नींव तो कई जन्मों से पड़ा हुआ है और ये जो घटना घटित होने वाला है वो केवल 18 दिन का युद्ध नहीं है, इससे संपूर्ण दुनिया का, अब जब मैं दुनिया का शब्द यूज कर रहा हूं मैं यूनिवर्स के भाव में कर रहा हूं, केवल पृथ्वी ग्रह की बात नहीं हो रही वहां पे, संपूर्ण सृष्टि की बात हो रही है। उसमें ये 18 दिन जो महाभारत का युद्ध था बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, तुम लड़ोगे या नहीं ये तुम्हारी इच्छा पे है। पूरा गीता पढ़ाने के बाद जगत गुरु कहते हैं यदेच्छसी तथा करो, जो तुम करना चाहते हो करो, हम कोई तुमको जबरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन चीज ये है, जानना ये है। तब अर्जुन क्या जवाब देते हैं, हम तो बहुत गड़बड़ा गया, मैं तो भाग जाना चाहता था इस लड़ाई से, लेकिन अब नहीं, अब वही करूंगा जो तुम कहोगे, करिष्ये वचनम तव। ये जिंदगी का मुख्य उद्देश्य है और इसमें पर्वों की और त्योहारों की बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए मैं ये घटना बता रहा हूं कि होली को आप होली मत समझिए कि आपने कुछ रंग फेंक दिया किसी के ऊपर और थोड़ा सा आग जला दिया आपने, थोड़ा सा नहीं तो बड़ा सा आग जला दिया। भारतीय ऋषियों का जो पर्वों की पद्धति है, जो त्योहारों की पद्धति है, वो जीने की कला सिखाती है कि तुम्हें कैसे जीना है, और हम भूल जाते हैं। जहां तक त्योहारों की, यहां तो मैं नहीं जानता कैसा होता है, लेकिन जहां तक आंध्र प्रदेश की बात है मैं इतना जानता हूं कि उस दिन ज्यादा खाना बनता है, क्या कहते हैं उसको, पकवान या मिष्ठान जो भी बात कहें, और चूंकि ज्यादा खाना बनाना है इसलिए ज्यादा समय लगता है खाना बनाने में, और लोग भूखे रहते हैं, कहते अब तक खाना नहीं बना, खाना खा लेते हैं चूंकि बढ़िया खाना है ज्यादा खा लेते हैं। मैं आंध्रा की बात बता रहा हूं, और चूंकि ज्यादा खा लिए पेट में दर्द शुरू हो जाता है, अब परेशान है पेट के दर्द से या कुछ तकलीफ से। और ज्यादा क्या होता है, दूसरे त्योहारों में तो बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, और होली के दिन अगर बढ़िया कपड़ा पहनो तो जरा बी केयरफुल, कहीं कपड़ा रंगीन ना हो जाए, कहीं उनके ऊपर ऐसे रंग ना पड़ जाए जो वास्तव में टॉक्सिक है। रंगों का उपयोग करना भी हम भूल गए हैं होली के दिन। और असली उद्देश्य क्या है होली का, वो भी मैं भूल गया, बस खाना, कपड़ा पहना, रंग धो लिया, और दूसरे तीन चार दिन तक हम रंग धोते रहते हैं, क्योंकि जरा पक्का रंग चेहरे पे लग गया तो बड़ा मुश्किल होता है ना, एक दिन में नहीं धो पाते, तो वी विल हैव टू फाइंड आउट सम ब्लीचिंग एस्पेक्ट्स। ये नहीं, असली चीज होली का भविष्य पुराने में एक घटना बताया जाता है, मैं केवल घटना ही बताऊंगा, उसका विस्तृत जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन आप जरा सोचिए अगर इस घटना को आपने समझा तो आपके जिंदगी में आने वाले अनेकानेक रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे। होली का त्योहार का मुख्य उद्देश्य यह है कि शरीर निरोग हो जाए। कहानी क्या है भविष्य पुराण में, कहानी एक है कि एक डायन कहें या कुछ भी कहें आप, राक्षसी कहें, वो क्या करती थी, बच्चों को खा जाती थी। अगर हम ज्योतिष शास्त्र के भाषा में कहें, एस्ट्रोलॉजिस्ट के भाषा में, तो जिसको हम बालारिष्ट कहते हैं, जो बचपन में जो बच्चों को तकलीफ आती है। तो लोग गए ऋषियों के पास कि हमारे बच्चे तो चले जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, क्या करें। तो कहे तुम इतना भी नहीं जानते क्या करना, तुम गाली दो, गालियां दो। मालूम है ना, होली के दिन गालियों का बड़ा शौक होता है। जितने तरह के गाली एक दूसरे को दे सकते हैं दो। और मैं मजाक में नहीं कर रहा हूं, भविष्य पुराण के आधार पर कह रहा हूं। और आजकल ये टेक्नोलॉजी कि हमारे मन के भावों को बाहर निकाल के अगर हम खाली कर देना तो फ्री हो जाएंगे। क्योंकि कई रोग केवल मानसिक विचारधारा का गलत दिशा के वजह से होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइकोसोमेटिक। और ज्यादातर जो गठिया है, जो डायबिटीज है, जो हार्ट ट्रबल्स है, जो कैंसर है, वो केवल मानसिक दूषित विचारों के वजह से आता है। तो होली के दिन क्या करते हैं, भड़ास निकाल दो, जिसको जितना गाली देना हो दो। निश्चित रूप से इस दृष्टिकोण से अगर आप उसका उपयोग कर सके, और ये उपयोग राधा जी करते थे बरसाना में, जहां आप लोगों को मालूम है ना बरसाना, जहां राधा पैदा हुई थी कृष्ण की, तो वहां पे लठमार होली होती है। लठमार क्या, जितने भी पुरुष वहां आते हैं वो कुछ भड़काते हैं औरतों को, और लाठी लेके दौड़ाती हैं औरतें, पीटती हैं, लिटरली पीटती हैं। लिटरली का मतलब यह है कि पहले ये तैयार होकर आने हैं कि चार पांच गद्दी बांध के, ताकि अगर लाठी पड़े भी तो कुछ चोट ना लगे। एंड इट्स राइट ऑल्सो, क्योंकि जो होना वहां पे है कि भड़ास निकालना, किसी को ना पीटना है ना किसी से हमें द्वेष दिखाना है। हमारे मन के अंदर जो जम गई है, चाहे उसको आप कलुषित विचार कहें या क्रोधित विचार कहें या ईर्ष्या के विचार कहें या जो भी आलोचनाएं आपके मन में आती हैं, उनको निकाल दो। तो डाइन जब बच्चों को खाना चाहती थी, वो होली के दिन, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लोगों ने ये प्रयोग किया, और अचानक उस गांव से बच्चे रोग मुक्त हो गए। और आज की मॉडर्न साइकोलॉजिकल सिस्टम ये बताती है कि अगर आपको किसी पे गुस्सा आता है ना, ये एक साइकोलॉजिकल थेरेपी है जो वेल एस्टैब्लिश्ड थेरेपी है, कि अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा हो तो गुस्सा निकालो, लेकिन अपने बेडरूम में एक तकिया में जिसके ऊपर आपका गुस्सा हो, चाहे तो उसका फोटो रख दीजिए, अब पीटिए। हाँ, यही तो लठमार होली सामूहिक रूप से करते। क्योंकि जहां विषय का ज्ञान हो जाता है तो हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जो अकेले आप करते हैं उससे ज्यादा अच्छा होता है जो सामूहिक हम करते हैं। यह तो पहला होली का उद्देश्य है कि मन का भड़ास निकालो, जितनी गंदगी है बाहर निकालो। ठीक है, गंदगी तो निकल गई, और मैं लिटरली कह रहा हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपको किसी के ऊपर भी गुस्सा हो घर में या ऑफिस में या कहीं पर, एडवर्ड डी बोनो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 25 किताबें लिखी हैं इसके ऊपर, किस तरह भड़ास निकालना है। और जितने नोबेल प्राइज विनर्स हैं उसको फॉलो करते हैं, और जब भी नोबेल प्राइज मीटिंग्स होती है ना, भाव समझ में आना, जो नोबेल प्राइज विनर्स का मतलब तो समझते हैं ना, जो अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च स्थिति में जो पहुंच जाते हैं उसको नोबेल प्राइज मिलता है। तो जुआलजी में जो नोबेल प्राइज पाए, या केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज पाए, या जो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज पाए, वो एक मीटिंग लगाते हैं कि नेक्स्ट क्या करना उन लोगों को। तो सबसे पहले इनको फोन करते हैं, एडवर्ड डी बोनो को। तो वो कहते हैं कि आपको 6 तरह की तकलीफ आती है बस, उससे ज्यादा तकलीफ नहीं आती। एडवर्ड डी बोनो, जिनको भारतीय संस्कृति के नहीं मालूम, जिसको भारतीय पर्वों के बारे में नहीं मालूम, उन्होंने भी जब साइकोलॉजी का विश्लेषण किया तो उन्होंने कहा कि बस छह ही तरह के आते हैं बस। और वो कहते हैं आप छह तरह का टोपी पहनिए, आप पहली बार लाल रंग की, उसके बाद पीला रंग की, उसके बाद गुलाबी रंग की, उसके बाद दूसरे सातों रंग की टोपी आप पहनिए, और उस टोपी का जो भाव हो उस भाव के अनुसार आप डिस्कस कीजिए आपकी सब्जेक्ट। मैं शायद बात की गंभीरता को मैं बता नहीं पा रहा हूं, ये बातें हो रही हैं नोबेल प्राइज विनर्स के बीच में। उदाहरण के लिए कोई जुआलॉजी में नोबेल प्राइज पाए हुए कुछ लोग हैं, इस साल किसी ने कुछ पाया किसी ने कुछ पाया, वो सब मिलते हैं तो उनसे वो कहता है कि पहले टोपी पहनो तुम, लाल रंग की टोपी या सातों रंग की टोपी, और आपस में बात करो। किस दिशा में बात करोगे? उस दिशा में बात करो जो वो रंग बताता है, सभी उसी रंग में बात करेंगे, सब एक रंग में रंग गए। कुल कितने रंग में रंग गए? छह रंग में रंग गए, छह टोपियों में रंग गए। और उन लोगों ने पाया, ये बड़ी विचित्र चीज उन लोगों ने कहते हैं कि पहले हमको जो 30 दिन की मीटिंग लगाना पड़ता था हम 45 मिनट में रिजल्ट पा जा रहे हैं। और ये वास्तविक बात मैं बता रहा हूं, आपको वेबसाइट में आप देख सकते हैं, डॉक्टर डी बोनो नाम है उनका। मैं कम्युनिकेट कर पाया रंगों का प्रयोग जो होली के दिन होता है, उस होली के रंगों के प्रयोग से सर्वोच्च स्थिति के लोग डिस्कशन में पहले उनको 30 दिन का सुबह शाम मीटिंग्स लगती थी, वो लगता था ये होता था, लेकिन जहां उन्होंने रंगों को अपनाया 30 दिन का, उस तरह के लोगों की समस्याएं, वो साधारण समस्याएं नहीं है, आप अंदाज लगा सकते हैं उन्होंने की समस्याएं किस तरह की होती, तो जो 30 दिन में एक निष्कर्ष पे वो पहुंच सकते थे 45 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो अगर आप होली के दिन रंग डालें तो साल भर की समस्याएं हल ना हो तो गलती किसकी है? गलती है रंग तो डालते हैं, रंग पहन नहीं रहे। उन्होंने कहा टोपी पहनो, भाव समझ में आ रहा है? और जो रंग हम लगाते हैं उसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग करना है, जो वसंत के दिन खिलते हैं, वसंत से पुष्प जो है अपने अपने रंग में विकसित होते रहते हैं, तो उन रंगों का उपयोग होता था पहले, हल्दी, कुमकुम, नीम, बेलपत्र। बेल मैंने करेक्ट वर्ड जो बिल्वा जो शिव के लिए पूजा करते हैं, ठीक है ना? द लैंग्वेज इज ऑल राइट। हाँ, और नीम बेस्ट एंटीबायोटिक, नीम से बढ़ के कोई एंटीबायोटिक नहीं है फॉर मेनी आस्थमेटिक डिसीजेस। अगर आप नीम का कषाय पी सकें, बट ऑफकोर्स यू हैव टू टेक द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट, डोंट जस्ट हियर माई लेक्चर एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। आई एम क्लियर अबाउट इट, आई एम जस्ट गाइडिंग यू। हल्दी, आपको मालूम है हल्दी क्या करती है? आपके एंडोक्राइन सिस्टम को ठीक करती है। और हमारे खाने में हल्दी पता नहीं क्यों डालते हैं, शायद रंग के लिए डालते हैं पता नहीं, लेकिन एक्चुअली हल्दी क्यों डालते हैं? इसलिए डालते हैं कि उससे आपका एंडोक्राइन सिस्टम बैलेंस हो जाता है। तो उन रंगों का प्रयोग होता था जो आयुर्वेदिक पुष्पों से। और परशुराम ने जब अपना पूरा 21 बार क्षत्रियों का हत्या कर लिया था तो हिमालय में उन्होंने एक फूलों की वाटिका लगाई, वैली ऑफ फ्लावर्स इट इज सेड। आप अभी भी जाके देख सकते हैं हिमालय में कितने तरह के फूल होते हैं वहां पे। वहां एक विचित्र सा फूल है कि अगर आप उसका गंध सूंघ लेंगे तो आप जो है एक अद्भुत दुनिया में पहुंच जाते हैं, जिनका दुरुपयोग हो रहा है ये चरस और भांग के नाम से। जिसका सही उपयोग हो ठीक है, हर दवा तो विषैला ही होता है, अगर आप ठीक से यूज कर सके तो जान दे देता है। तो होली के दिन जो रंगों का प्रयोग है, इस ढंग से अगर हम कर सकें, नीम का घोल फेंकिए, हल्दी का घोल फेंकिए, लोगों को नहाइए उससे। लेकिन हम नहाते किससे हैं? नहाते नहीं, नहलाते हैं शायद, उन रंगों से जो टॉक्सिक हैं, केमिकल्स। ये तो बिल्कुल गलत रास्ते पे चला गया। तो कम से कम अब की बार ये याद रखें कि इन रंगों का प्रयोग, और इन गुरुजी ने, परम पूज्य गुरुदेव ने, जब हमेशा मैं परम पूज्य गुरुदेव के बारे में बताता हूं, मैं श्रीराम शर्मा आचार्य के बारे में नहीं बता रहा हूं, उनके ज्ञान के बारे में बता रहा हूं, जिसे हम साइंस में हम पढ़ाते हैं न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन के बारे में थोड़ा ना बताते हैं हम, तो उन नियमों को बताते हैं जो न्यूटन ने दिया, और वो नियम ऐसे हैं जो शाश्वत हैं, सनातन है और हर रोज नए हैं। इसी तरह इन त्योहारों में, होली के त्योहारों में, हमने पहला आपको एक कंडीशन किया, आपके मन का भड़ास निकालिए, एक शॉर्ट टेक्निक भी दिया, तकिया को पीटो। दूसरा हमने क्या कहा, रंगों का प्रयोग। इन रंगों के प्रयोग से कितना अद्भुत हमारे जिंदगी में परिवर्तन आते हैं, हम कभी देखते ही नहीं, जबकि हर रोज होता है। हर रोज रंगों का प्रयोग आपके ऊपर होता है, सूर्योदय के समय नारंग, क्या कहते हैं उसको, नारंगी, सैफ्रॉन, सूर्य का किरण, लाल और पीला मिक्स, ऑरेंज, उसको नारंगी कहते हैं ना। आर यू अवेयर ऑफ दैट? सूर्य तो आया, आपको रंगों में नहला दे रहा है सुबह करीब 10-15 मिनट, और आप नहाते ही नहीं, आप शायद उस समय देखते भी नहीं। लेकिन आजकल तो इतना वीडियो टेक्निक सब डेवलप हो गया, आपको देखने की भी जरूरत नहीं, आप यहां देख सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि पहले ये सब टेक्निक्स नहीं थे, तो मजबूरी थी, आपको सूरज को उगते हुए देखना ही होगा, पता नहीं उस समय आप उठे रहेंगे कि नहीं, जिस तरह का काम आपका हो रहा है। तो रंगों का उपयोग ये इस पूर्णिमा के दिन प्रकृति दिखाती है, प्रकृति दिखाती है। इसलिए उन रंगों को कैसे देखना है, उन रंगों में नहाना है, ठीक है, एक दूसरे को नहा लो, म्यूचुअल, दैट इज अ वेरी करेक्ट प्रोसेस। लेकिन हम वहां पोतने की और उसके बारे में सोचते ही हम भूल जाते हैं कि रंगों का हम उपयोग कर रहे हैं। मैं आज दिखाऊंगा गुरुजी ने किस तरह अखंड ज्योति में उन्होंने दिया कि रंगों का उपयोग कैसे करना है। और दे वर्क, हर रोज सूरज से जो किरणें निकलती हैं वो ऑरेंज कलर किरणें, वो आपकी जिंदगी को बदल देती है। बदलने दे तब ना, उस रंग का उपयोग करे तब ना। वो नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में इसीलिए मैं बता रहा हूं, उस रंग की टोपी पहनते हैं तो उस रंग का भाव आते थे, उस रंग के भाव में वो अपना सेमिनार्स करते थे, अपनी डिस्कशंस पूरा करते थे। और जो 30 दिन मन मध के तरह तरह के आर्ग्यूमेंट करके जो वो नहीं कर पाते थे, वो 45 मिनट में कर लेते हैं आजकल। तो वो जब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? केवल बस आपको वो मूड बनाना है, वो वातावरण बनाना अपने अंदर। ये वातावरण में सबसे मुख्य क्या चीज होती है? काम दहन। ये होली का उत्सव, हमारे ऋषियों ने हमेशा कहा कि यह वह घटना घटी आज के दिन, होली के दिन, जब मन्मथ शिव को परेशान करने के लिए तीर छोड़ा तो खुद परेशान हो गया, खुद गया। मन्मथ, मन्मथ का एक मतलब है मन को जो मधता है, मन्मथ। जब मन हमारा मधने लगते हैं तो क्या होते हैं? परेशानी आती, वरीज आते। वो इस दिन जलाया जा सकता है, एक साल के लिए उसकी छुट्टी। किस तरह की छुट्टी? अग्नि के द्वारा, उसी को हम काम दहन, जो होलिका का पैर जलाते हैं ना, उसका मेन उद्देश्य तो ये है।
लेकिन जब मैं काशी में पढ़ता था, रिसर्च करता था, तो हम सोचते थे किसका किवाड़ उखाड़ के ला दें, किसके घर में कोई चीज पड़ी हो, कुर्सी हो जाएगा, ला के आग में डाल दें। ये खेल बन गई, उसका असली उद्देश्य भूल गया। इसके अलावा एक और घटना जो है होली से जुड़ा हुआ है, जिसको प्रहलाद से जुड़ा हुआ है। ये घटना अगर आप इस समय समझ सकें तो आपको कितना बड़ा प्रोटेक्शन मिलने वाला है आप महसूस कर सकते हैं। 5 साल का बच्चा भगवान का भक्त और उसको मार डालने की कोशिश कौन कर रहा था? हिरण्यकश्यप, जो तीनों लोकों का स्वामी है। बच्चा क्या लड़ेगा उससे? लेकिन हुआ क्या? प्रहलाद को मार डालना है तो होलिका नाम की उसकी एक बहन थी, उसको एक वरदान प्राप्त था कि अगर वो एक दुपट्टा ओढ़ के बैठ जाए आग में तो वो तो नहीं जलेगी। उसने कहा, तुम्हारे बच्चे को मारने के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं मार दूंगी, बस तुम जरा चिता जला दो, मैं अपना शाल पहन के प्रहलाद को अपनी गोती में बैठा लूंगी। प्रहलाद गया, तुमको छुट्टी है। लेकिन हुआ उल्टा, वो गई। और ये आप एक कहानी मत समझिए, ये वास्तविक घटना है। अगर भगवान के ऊपर आपको आस्था है तो कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता है उतना विश्वास हमें? हम तो भगवान को बताने चलते हैं कि हमारा प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। अर्जुन ने भी वही गलती किया था। आप भगवान को अपना प्रॉब्लम बता दीजिए, वो तुमसे ज्यादा बढ़िया जानता है कैसे उसका निवारण करना है। तो होली के दिन ये भावनाएं हमारे मन की, जो अंदर क्रोध का उफान हो, जो भड़ास हो, गालियों के रूप में निकाल दो, लाठियों लठमार होली के रूप में निकाल दो। निकाल देने के बाद रंगों से खेलो, लेकिन रंगों से खेलने का यह मतलब नहीं कि बस उस दिन खत्म हो गया। होली के दिन जितने आप जिस रंग में रंग गई हैं वो रंग कंटिन्यू होना है, वो भावनाएं कंटिन्यू होना है। और उसके बाद आस्था, एक श्रद्धा कि हमें भगवान के ऊपर विश्वास है, उन्हें मालूम है हमको कहां ले जाना है। तो फिर मैं क्यों परेशान होती, उनको मैं क्यों बताने जाती हूं कि इस तरह करो? गलती हम सब करते हैं। लेकिन यहां गुरुजी भी कहा करते थे कि तुम्हारी अपनी परेशानियां बताओ, तुम कहो हम ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जो परेशान है वो तो कहेगा ही, लेकिन बाद में मन में ये निश्चिंतता रखो कि ही नोज बेस्ट, उन्हें मालूम है कि हमारी परेशानियां कैसे निकाल सकते हैं। और इन सब के साथ एक और घटना होली के साथ जुड़ी हुई है, जिसको डोलोत्सव कहते हैं, पूतना का वध। पूतना क्या थे? बच्चों को मारते थे, कृष्ण को मारने आई, उल्टा हो गया, वो गई, कृष्ण बच गए। तो आप क्या समझते हैं कि भगवान की लीलाएं केवल अपने बड़प्पन दिखाने के लिए बताते हैं या आपको कोई मार्गदर्शन देते हैं? हम ये भूल जाते हैं, एक घटना पढ़ते हैं लीला, और कई पारायण और साई के पारायण या भगवान के पारायण हम जब उनकी कथा का लीलामृत सुनते हैं, हम एक चीज भूल जाते हैं कि वो लीलाएं हमारे लिए हैं, जो पढ़ रहा है उसके लिए वो लीला दिखाया जा रहा है। लेकिन लीला में एक कंडीशन है, लीला का मतलब है खेलना, है ना? जब खेलना है तो नियम का तो पालन करना है। क्रिकेट कोई खेल रहा हो और आपको पता ही चल गया कि पहले ही वो फिक्स्ड मैच है तो आप देखना पसंद करेंगे? अच्छा लगेगा आपको? आजकल तो डाउट आता है कभी कभी कि कहीं ये फिक्स्ड आउट तो नहीं हो रहा है, तो पूरा इंटरेस्ट गया खेल में, है कि नहीं? क्योंकि जब लीला लीला के नियमों के अनुसार खेलो तो आनंद आता है। तो कृष्ण भगवान की क्या लीला थी, जब वो पूतना के साथ दूध पी रहे थे तो क्या लीला थी, किस तरह की बाल लीला, कब की बाल लीला, वामनावतार से वो कहानी चली आ रही। लेकिन मैं उस दिशा में जाना नहीं चाहता, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब आपको खेलना ही है तो खेल का नियम को जान के खेलो, बस। 11 प्लेयर क्रिकेट खेलते हैं लेकिन हर आदमी अपना खेल खेलता है कि नहीं, क्या अलग अलग खेल खेलता है, दूसरे का खेल थोड़ी ना खोलता है वो, है कि नहीं। तेंदुलकर खेलेगा तो अपना खेल खेलेगा, धोनी खेलेगा तो अपना धोना धोएगा। तो हमारे इस विशाल मानव समुदाय का जो खेल है, हमारा खेल क्या है, हमारा रोल क्या है, वो रोल अगर आप ठीक से जी लिया तो आपका खेल हो गया। ये मत परेशान हो कि बगल का आदमी या अपना आदमी या फैमिली का आदमी या हमारा दोस्त खेल का नियम का पालन कर रहा है कि नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, वो तो एम्पायर की जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा एम्पायर ये खेल देख रहा है जो इस सारे जगत नाटक को चला रहा है, वो तो देख ही रहा है। तुम क्यों परेशान होते हो बताने के लिए कि ये सही है कि तुम अपना खेल ढंग से खेलो। तब जब जिंदगी को तुम खेल के रूप में देखना देख लेती हो, देख लेते हैं, when the life becomes a game, खुशी की बात हो जाती है, आनंद की बात हो जाती है। ये होली के ये तीन चीज अगर हमारे मन में रहा, इस तरह हर पर्व की प्रेरणा है। थोड़ा आप सोचेंगे या अपने वेबसाइट में देखेंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन ये तीन चीज दे रही है। एक बताती है कि तुमको खुद क्या करना है, तो होली में तुमको खुद क्या करने के लिए बता रहा है, मन का भड़ास निकालो। दूसरा क्या बोलता है, अपनी सामर्थ्यता बढ़ाओ। किस तरह, रंगों में डूब के। उसके बाद क्या करना है, कृष्ण लीला, जैसे कृष्ण अपना खेल दिखाया तुम भी अपना खेल दिखाओ। तो ये तीन चीज होली का आधार है और हर पर्व में ये तीनों चीज आपको मिलेंगे। इस दृष्टिकोण से आप हर त्योहार को देखिए, ठीक। तो चूंकि हम रंग से खेलने के लिए बता रहा हूं तो जरा मैं कुछ रंग दिखा दूं आपको तो कोई एतराज है, देखिए और उन रंगों को पकड़िए। ये परम पूज्य गुरुदेव हमारे साथ होली खेलने जा रहे हैं तो उन रंगों में डूबिए, आप मन को लगाइए उसमें। और वहां इंग्लिश में दिया जा रहा है वो ठीक है कि उसका हिंदी ठीक है ना, इट विल कंटिन्यू इन इंग्लिश, बट दिस इज द रियल होली। बट आई एम नॉट सेइंग प्ले लाइक दिस सीइंग ए टीवी, गो आउट एंड प्ले लाइक दैट। सांप को उस रंगों में बिला दो, लेकिन हल्दी के पानी से, नीम के पानी से, बिलोपत्र के पानी से, जिंदगी बदल जाएगा आपको एक साल के लिए। कलर, कलर यू टेल हियर दैट। अब हम होली खेलने जा रहे हैं, अब वो आपके कितने रोगों को, कितनी समस्याओं को लिटरली वो ठीक करेगा, इफ यू डूब जाओ उन वर्णों में, उन रंगों में। नहीं, दिस विल बी इन इंग्लिश, सो नो दिस लाइट। हाँ, इट्स ओके, नॉट ऑल लाइट्स ओके, इट्स ओके। जब रंग खेलना ही है तो ढंग से खेलेंगे, वी विल प्ले द कलर्स वेल, दिस इज इनफ। हाँ, ओके ओके ओके, इट्स ओके। टॉपिक, डू कलर्स अफेक्ट द बॉडी? यस, दे अफेक्ट द बॉडी, mind and system, and a holistic living, जहां मन वाक और कर्म मिल जाते हैं. पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का अखंड ज्योति का एक आर्टिकल का ये जो है रूपकल्प, मतलब उसका फिजिकल कलर एक्सप्लेनेशन है. उन्होंने शब्दों में लिखा, हम रंगों में दिखा रहे हैं. जब आप पेड़ देखते हो तो इस तरह देखते हैं आप. कंटिन्यू कंटिन्यू. उन रंगों को देखिए और डूब जाइए उसमें.
फाइट लागो
and alertness. It purifies the nervous system, brain, liver, intestines,
intellectual and digestive functions, as well as sleep disorders, paralysis, constipation, diabetes, and depression. But its use is prohibited during burning sensation, diarrhea, fever, state of agitation, and increased pulse rate. Green color. Green color is a symbol of peace and adaptability. It is related to Anahata Chakra. It keeps the body and mind calm and is beneficial during mental agitation. But its prolonged use brings boredom. Green color keeps active the sympathetic nervous system, controls blood pressure, and stimulates vegetarian memory. It removes insomnia, tiredness, and irritability. It is also helpful in muscle and tissue formation. Green color also acts as antiseptic, promotes friendship, faith, and hope. It is soothing and gives emotional comfort. At the same time, it also generates jealousy and superstition. As green is the color of chakra, centered in the heart, it is also helpful in heart ailments, hypertension, ulcer, and headache. It also cures fever, acidity, metabolic imbalance, obesity, liver and spleen problems. Its use is prohibited in tumor, cancer, etc. Blue color. Blue color symbolizes speed, confidence, desire, and creativity. It is also the color of throat chakra, considered to be related to speech and self-expression. The color flows down heart rate, hence is considered beneficial in tachycardia. It also helps in reducing high excitement and manic depression. Blue color is also known for high spiritedness, intuition, honesty, truthfulness, concentration, and devotion. It is used practically in problems of tumor, infection, anger, hatred, eye diseases, penile dome, etc. But it is prohibited in conditions of hypertension, paralysis, muscular stiffness, etc. Indigo color. Indigo color is associated with the third eye. It symbolizes intuition, extrasensory perception, etc. Violet color. Violet color is a purifier and is related with crown chakra. It affects the whole skeletal and nervous systems of the body. It is antiseptic and is a purifier at both physical and spiritual levels and synthesizes the energy of both levels. It is famous for regulating the mineral elements of the body. It is a representative color of the qualities of devotion, self-respect, and faith. White color. White color is all the color colors. It purifies and refines the energy systems of the body and increases spirituality. It pacifies the mind, heart, and thought, and orients them towards creativity. Golden color develops self-consciousness. It gives immunity from diseases in general and provides relief in cardiac problems. According to the Ayurveda, it symbolizes lotus, that is energy. It also regulates endocrine glands. The effect of color is vast, deep, and profound, provided it is used judiciously. Color therapy has specific signs and techniques of its own. One should select a color suitable for himself with the help of a competent color therapist. Even the plants of the garden should also be chosen for flowers of appropriate colors. This color scheme helps in meditation too. Conclusion. Colors have not only decorative value, they are powerful media to overcome many of our day-to-day problems. Besides enriching our lives and surrounding with beauty, taste, and refinement, the judicious use of color is helpful in the development of our inner qualities and capabilities.
It's okay, give it to the hand. You just remove it. So the light's on. And now you have understood what the importance of Holi is. And in Holi, you have one very specific approach towards life. That is what Parampuja Gurudev used to tell me. And you have asked me my experiences with Parampuja Gurudev. I think I have given sufficient knowledge about Holi. Okay?
Yes.
And now, what I request you is, be serious about it. You select your colors. You heard it, and it will be in that e-gurukul.net. It is available there. Those who want to see it. But the basic things which I will tell you, what I was talking about, the Nobel Prize winner's six hats. You also have to use six hats when you are trying to play the real Holi. जब आप होली खेलना चाहते हैं तो इन रंगों का विश्लेषण भी सीख लीजिए. बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है. मूलाधार चक्र लाल रंग. तो लाल रंग आपको कब यूज करना है? जब आपका सहन शक्ति कमजोर पड़ रहा है तो लाल रंग आपकी सहन शक्ति को बढ़ाता है. तो वेन एवर यू वॉन्ट ए प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड यूज रेड कलर वेयर पेशेंस सहन करने की शक्ति और क्षमा करने की शक्ति ये दोनों जब कम पड़ता है अपने अंदर तो लाल रंग का इस्तेमाल कीजिए. ऑरेंज कलर. ऑरेंज कलर में एक बड़ी विचित्र खूबी है. मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व. Am I going very scientific? Am I going beyond the heads? Should I continue like this? I am not able to hear you. I wanted a... I will continue? So, the Prudhvi Tattva, I am not talking about earth. I am talking the earth principle, is based on forgiveness and forget. Sahan karne ki kshamta badhati hai, kshama karne ki kshamta badhati hai. लेकिन यहां एक चीज और आप याद रखिए. फॉरगिव एंड फॉरगेट इज नॉट फॉरगिव एंड फॉरगेट. यू गिव समथिंग टू गेट समथिंग. फॉर गेटिंग समथिंग फॉर गिव ए डैश गेट. फॉर गेट टू गेट समथिंग यू हैव टू गिव समथिंग. इज इट नॉट. आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको देना ही होगा ना. लेकिन स्वादिष्टान चक्र आपको एक विचित्र अनंत शक्ति आपको देती है. वो क्या देती है? एक बीज है आपने पृथ्वी में, क्या कहते हैं उसको, पृथ्वी में गाड़ दिया कहना ठीक नहीं, बोया जहां गाड़ना नहीं, बीज को बोना. गाड़ दिया तो गया, बट वी वॉन्ट टू गेट समथिंग तो हम बोते हैं. तो किससे वह बीज बढ़ता है? पानी से बढ़ता है, है ना. बिना पानी दिया कोई बीज बढ़ेगा नहीं. तो स्वादिष्टान चक्र ऑरेंज कलर बढ़ाता है थिंगों वस्तुओं को. यू शुड नो हाउ टू यूज इट. तो एक बीज को आपने बोया, वो बढ़ा, फिर क्या होता है? फल बनता है. फिर क्या होता है? वो फल आप खाते हैं, फिर बीज बोते हैं. इस तरह आप कितनी बार कर सकते हैं? एक बार, दो बार, कितनी बार कर सकते हैं आप? अनंत बार, है ना. तो अगर एक बीज अगर आपके मन में पड़ गया और उसका ऑरेंज कलर मिल गया, जिसको हम स्वादिष्टान चक्र कहते हैं, तो वो तो अनंत हो जाएगा. एक दिन में नहीं होगा. एक बीज बढ़ा तो फिर उसको बढ़ना है. बढ़ने के बाद फिर काटेंगे, फिर यू विल रो द सीड्स अगेन, यू विल then you get, it goes on by itself. So the plenty, किसी भी चीज को आप अनंत चाहते हैं कि यह हमारे बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, तो ऑरेंज कलर इस्तेमाल की.
और पीला रंग वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि फलाने घटना क्यों घट रही है, तो अगर आप पीला रंग इस्तेमाल करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कैसा है। और लोग हमसे कहते हैं कि आप तो बता तो बड़े आसानी से देते हैं, पीला रंग इस्तेमाल करो, मैं कैसे इस्तेमाल करूं? अरे आप आंख बंद कीजिए और आप पीला रंग देखना चाहें तो देख सकते हैं कि नहीं? बी ऑनेस्ट, यू कैन सी। सो विद द प्रॉब्लम यू सी इट, गॉट द मेथड? दैट इज द रियल होली, दैट इज वॉट द एंटायर कम्युनिटी प्लेज विथ इट, एंड देन यू गो फॉर द ग्रीन, a lot of love, there will be no more fightings, no more terrorism. So if you know how to see the green, and here in New Zealand I find everything green, but be aware of it, react to it, no more fightings, no more terrorism, no more wars, if you know how to utilize the green color. How to utilize it? You see the green. We see the green and we go on talking something else. You are missing the bus. So when you see that greenery, and if you allow it to seep in, all your heart problems vanish. Many times I have seen that high blood pressure is controlled just by visualizing 5 minutes in the morning green and 5 minutes in the evening green, because in cities we never see any green, because all cities have now become concrete jungles. And then you go to the blue, it gives intuition. And you go to the Ajna Chakra, jisko baigani rang karte hain, baigan ka rang. Not exactly violet, but more blue. Violet glows to the Sahasrara. Violet is a mixture of red and blue, where red is more, that is violet. Where blue is more, it is indigo, that is the Ajna Chakra. It gives intuition. So that's what I was telling about the experience with Parampuja Gurudev. I read, my entire education was in Benares. Since my 8th class to PhD, I did it in Benares. That's why I am able to convey in Hindi. I hope it is a correct Hindi. Yeah. You are able to understand my Hindi? So that's the reason why I am able to talk. And there I had 36 masters, spiritual guides. You must have heard about Anandamayima, the Gurudev of Indira Gandhi. I was her disciple. And you know Gopi Krishna Tantrikacharya, you heard him? He's the foremost tantric in the world at his time. And he was my teacher. And there are many other teachers. Because Kashi, you must know, you get a number of teachers. And all these teachers were interested only in telling you that you have to evolve, evolve, evolve. Aapko atma gyan prapt karna hai. ये सब क्या बकवास हो रहा है, ये दुनिया कुछ नहीं, ये सब माया है, दुनिया से कुछ होने वाला नहीं। और मैं परेशान होता था, ये सब क्या बोल रहे हैं कि ये दुनिया में मैं हूं और हमको परेशानी है, सुख है, आनंद है, दुख है, और सब कहते हैं ये माया है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने, जहां मैं परम पूज्य गुरुदेव की बात मैं इसलिए बता रहा हूं, उन्होंने एक बात कहा कि बेटे, बेचारे भगवान कृष्ण भी पैदा होने से बच नहीं सकते, उनको भी मुक्ति नहीं है। जब भगवान कृष्ण को ही मुक्ति नहीं है तो तुमको कहां से मुक्ति मिलेगी? तो मैं गड़बड़ा गया कि ये सब क्या हो रहा है। ही इज माई 39th गुरु, परम पूज्य गुरुदेव। आई मेट हिम इन 1971 एंड देन एट दैट टाइम आई वॉज डूइंग माई PhD इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड उन्होंने ऐसे बोल दिया कि मुक्ति तो बेकार की चीज है, भगवान कृष्ण को भी मुक्ति नहीं है। तो कह हमारे शायद चेहरे पे उन्होंने समझ लिया कि ये गड़बड़ा गया है। तो उन्होंने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। बेचारे कृष्ण, जब जब गड़बड़ हो जाता है जब जब धर्म की ग्लानि होती है उनको पैदा होना पड़ता है. एंड ही इज फोर्स्ड, ही हैज गिवन दैट प्रॉमिस. तो जब बेचारे कृष्ण को ही मुक्ति नहीं है पैदा होने से, तो क्यों मुक्ति के पीछे भाग रहा है? तो पहली बात यह हमको समझना है कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए. चूंकि गुरुजी बाद में हमको बताए क्लासेस में कि अपने 5 साल का वो सत्र चलाते थे, तो उन्होंने एक बात कहा, अजोपि सन् नव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्म मायाया. हम लोगों में और कृष्ण में एक अंतर है, पैदा तो वो भी होते हैं, पैदा तो हम भी होते हैं, लेकिन यह अंतर है कि उन्हें मालूम है कि वो अज है. अज मतलब जिनका बर्त नहीं है. अजोपि सन् इवन दो आई एम अनबॉर्न, मुझको पैदा होने की कोई जरूरत नहीं है. अजोपि सन् अव्यय आत्मा, हमारे में कोई कमी नहीं है, मुझ में नाश होने वाला, व्यय होने वाला, कम होने वाला कुछ नहीं है. अजोपि सन् अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् आई एम द मास्टर ऑफ द 5 एलिमेंट्स. यू नो द 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी, पानी, आग, वायु, आकाश, दीज आर द 5 एलिमेंट्स. और हम लोग भी 5 तत्वों से बने हैं, प्रकृति भी 5 तत्वों से बनी है, इसीलिए इसको प्रपंच कहते हैं. लेकिन अंतर इतना है कृष्ण के पैदा होने में और हम लोगों के पैदा होने में कि ही इज द मास्टर ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स एंड वी आर कंट्रोल्ड बाय 5 एलिमेंट्स. अजोपि सन् अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृति स्वाम अधिष्ठाया आई एम द मास्टर ऑफ द नेचर संभवामि आत्म मायाया. वी आर एंग्रॉस्ड इन माया, इन द माइक एनर्जी, बट कृष्णा कंट्रोल्स माया. सो दैट इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस आई हैड विथ परम पूज्य गुरुदेव. ही सेड व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिज्म, जब आप आध्यात्म की बात में सुनते हो तो मुक्ति के बारे में मत सोचो, तू तो मुक्त है. हम भी तो कहते हैं ना कि हमारा आत्मा तो मुक्त है ही, जो गड़बड़ हो रहा है शरीरों का गड़बड़ हो रहा है, वो तो गड़बड़ होना ही है. इस गड़बड़ी को कृष्ण भी नहीं बच सके, गुरुजी भी नहीं बच सके, कोई भी नहीं बच सकता. लेकिन जो आत्मा है उसको बचने की क्या जरूरत है? इट इज ऑलरेडी द पावर ऑफ इट. दैट इज द फर्स्ट मैसेज ही यूज्ड टू गिव, ए कंप्लीट टॉपसी टर्वी, ए ओवरहेड स्टैंड. शीर्षासन कर दिया उन्होंने हमारा, कि आध्यात्मिकता का तो पूरा अंतर ही बदल गया. उन्होंने कहा आध्यात्मिकता का यह मतलब नहीं कि तुम दुनिया से भाग जाओ, तू दुनिया का शासन कर, तू दुनिया को मार्गदर्शन कर, तू ऐसा व्यक्ति बने जो तुम्हारा सहारा हमेशा मांगे. तो इसके लिए हमें क्या करना है? और ये जरा 5 मिनट्स मोर आई कैन टेक इट, इज 9:05. ओके, कैन आई कंटिन्यू ना? बिकॉज दिस इज द रियल डिस्टर्बेंस. आध्यात्मिक जगत में गुरुजी कहते थे एक गड़बड़ हो गया. क्या गड़बड़ हो गया? कि एक अंधा और लंगड़ा मिल गए. कहानी मालूम है ना अंधा और लंगड़ा का? एक बार एक गांव में आग लग गया, एक अंधा आदमी था, एक लंगड़ा आदमी था. अब अंधा आदमी को तो मार्ग नहीं दिखता था, और लंगड़ा का तो मार्ग दिखता है लेकिन बेचारा जा नहीं सकता. तो अब क्या करना है? कि अंधे के कंधे पे बैठ गया, लंगड़ा दिखता जा रहा था और अंधा चल रहा, दोनों बच गए. तो आज का जो साइंस है वो अंधा, इट इज ब्लाइंड. आज के जितने भी समस्याएं हैं, गुरुजी ही नहीं कह रहे, साइंटिस्ट से आज पूछे वो भी कहते हैं कि सब हमारी गड़बड़ी है, हम लोगों ने जो है सारी दुनिया को विषाक्त कर दिया. इसमें तो डिटेल्स में जाने की कोई जरूरत नहीं ना, मान जाते हैं ना कि आज की जितनी भी हमारी समस्या है केवल विज्ञान के द्वारा हमें जो दी गई साधनाएं हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है. केवल इस वजह से गड़बड़ है. दुरुपयोग क्यों हो रहा है? अंधा है, उसको मालूम नहीं कहां उपयोग करना है. और जो धर्म, जो रिलीजियन रास्ता बता सकता है, वो लंगड़ा हो गया है. तो गुरुजी बड़े साफ शब्दों में कहा करते थे हम लोगों से कि लंगड़ा क्यों हो गया है? धर्म को तो लंगड़ा नहीं होना चाहिए ना, लंगड़ा क्यों हो गया? लंगड़ा इसलिए हो गया कि जो जो धार्मिक नियम बनाए गए हैं वो उस जमाने के हैं जहां आदमी एक गांव या एक प्रांत में सीमित रहता था। अब आप तो सब संजय हो गए हैं, संजय का मतलब आप समझ गए ना, जिन्होंने गीता को देखा, महाभारत युद्ध को देखा, उसको दिव्य दृष्टि भी था, दिव्य श्रवण भी था। अब आपको तो दिव्य दृष्टि भी है, दिव्य श्रवण भी है, टीवी है आपके पास, मोबाइल फोन, एंड रियली वरीड भाई, नो फोन इज बिकॉज वेन एवर आई गिव सम लेक्चर आई फाइंड एटलीस्ट 20 या 30 पीपल हैविंग देयर मोबाइल फोन एंड वॉकिंग आउट। सो आपको इस समय की जीने की कला में एक विचित्रता आ गई जो कभी दुनिया में नहीं आया, कि आप सब जो हैं दिव्य दृष्टि पाए हुए हैं, दिव्य श्रवण पाए हुए हैं, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सारी दुनिया का मैसेज आपको मिलता है। कई जगह तो हम देखते हैं कि अगर न्यूज़पेपर नहीं आए तो उस दिन घर में बड़ा बवाल हो जाता है। कम से कम हमारे पिताजी से न्यूज़पेपर नहीं आया अब तक, अभी तक नहीं आया, कैसे लेट हो गया? लेकिन आपको मालूम है कि न्यूज़पेपर का मतलब संपूर्ण दुनिया का खबर आपके यहां आ रही है। मैं गुरुजी के बारे में बता रहा हूं, उन्होंने क्या बताया कि गलती कहां हो रहा है। यू आर ए वर्ल्ड सिटीजन नाउ, आप एक देश में या एक प्रांत में लिमिट नहीं है। अगर आप कहीं भी हो, आपके रिश्तेदार कहीं और है, किसी और देश में है ना, लेकिन हमारे ध्यान करने का ढंग, हमारे साधना करने का ढंग कैसा है? बहुत पुराना है। हम जप करते रहते हैं, हम पूजा करते रहते हैं, हमको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे बढ़ रहे हैं या क्या हो रहा है। तो गुरुजी ने कहा तेजी लाना है आध्यात्मिकता में, तो उस तेजी को हम कहां से ले आएंगे? तो उन्होंने दो इंस्ट्रूमेंट्स दिया। उन्होंने कहा किसको आप हिंदू मत कहिए, गायत्री मंत्र और यज्ञ एक टेक्नोलॉजी है, आप इसको एक लेबल लगा के बंद मत कर दीजिए एक कमरे में। इसलिए मैं उदाहरण देता हूं न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ जब साइंटिफिक स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, न्यूटन के बारे में क्या जानते हैं? आज तक मैं नहीं जानता हूं न्यूटन कैसे दिखता था, उसके कितने बच्चे थे, या कैसा ड्रेस पहनता था, या वो अब तिलक लगाता था कि टोपी लगाता था कि दाढ़ी बढ़ाता था, उनसे हमें मतलब नहीं। न्यूटन कैसा था, क्या करता था, कैसे जिया, हमसे मतलब नहीं। हमें उस नियम से मतलब है जो न्यूटन ने दुनिया को दिया, द लॉ। और न्यूटन ने जो नियम दिया गुरुत्वाकर्षण का, वो उस समय भी ठीक था, आज भी ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा, वो नियम नहीं बदलने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी ने, ओम नाम का एक साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया, उसको ओम सला कहते हैं। हमको आज भी बड़ा आश्चर्य रहता है उसका नाम ओम कैसे हो गया, लेकिन उसका नाम ओम है, ओम सला। वी इज इक्वल टू आई आर, ही गेव ए फॉर्मूला। आज का जो भी चमत्कार हम देखते हैं सब इलेक्ट्रिसिटी का है, सब इलेक्ट्रिसिटी का है। लेकिन वह व्यक्ति जो ओम नियम दिया उसको मालूम भी नहीं था कि इस तरह की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आएगा, लेकिन नियम वही है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो मैं इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं, आगे पता नहीं क्या क्या नए नए डिस्कवरीज होने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी में, वो भी इलेक्ट्रिसिटी के नियम के ऊपर आधारित है। इसी तरह गुरुजी कहते हैं कि हम लोगों ने एक गलती किया कि हमने जीना भूल गए। हम लोग इतना मेहनत हम करते हैं लेकिन बूढ़े होते चले जाते हैं। तो यहां हमको इंग्लिश वर्ड बड़ा अच्छा लगता है, हमारा बेटा का उम्र कितना है, 1 ईयर ओल्ड। आप ही कह रहे हैं कि वो 1 साल का बूढ़ा है, कहते कि नहीं, व्हाट इज द एज, 2 ईयर्स ओल्ड। तो आप बुढ़ापे की ओर तो जा रहे हैं, इट इज ओके, आई एम नॉट सेइंग इट इज राइट और रॉन्ग, लेकिन आपका जिंदगी बुढ़ापे की ओर नहीं जा रही, आपका शरीर जा रहा है। आप तो दिमाग तो ग्रो हो रहा है ना, आप तो बढ़ रहे हैं ना। तो गुरुजी कहते हैं कि दिमाग को बढ़ाने का टेक्नोलॉजी दिमाग को जीने की कला को बढ़ाने का टेक्नोलॉजी गायत्री मंत्र है। और आप लोग जो है जीने की कला के बारे में सोचते नहीं, आपने जो है एक तस्वीर बना दिया, एक हाथ में कमंडलू थमा दिया, एक हाथ में पानी थमा दिया। नहीं, क्या मतलब है फिर उस चित्र का? अगर हमें जीना है तो दो चीज चाहिए। जीना हो तो हार्ट चलना है ना, तो हार्ट कमंडलू है जो पानी दे रहा हमारे सारे शरीर को, और वेद नॉलेज दे रहे। अब बोलो दिमाग और हार्ट केवल हिंदुओं का है? हम लोग चलाएं एक क्या कहते हैं उसको, आंदोलन? नहीं नहीं नहीं, केवल इज इट पॉसिबल? एवरी रिलीजियन, एवरी फेथ, एवरी सेक्स नीड दिस टू। इन द एंटायर गायत्री मंत्र टेल्स यू हाउ टू डेवलप दैट इफ यू हैव ए करेक्ट हार्ट। व्हेन आई से करेक्ट हार्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर फिजिकल हार्ट, आपका हृदय कैसे बढ़ाना है वो गायत्री मंत्र बताता है। और तुमको ये हिंदू मंत्र है, गुरुजी बड़े परेशान होते थे कि हमको समझ में ही नहीं आता है बेटे कि हम इसको गायत्री मंत्र को हिंदुइज्म से कैसे मुक्त दिलाए। बाबा ये तो उन लोगों के लिए है जो जी रहे हैं, जिनको जीना चाहिए, जो जीना सीखना चाहते हैं उनके लिए। तो उसमें क्या है हमारे जीने के लिए? सबसे पहले हमारे पांच कर्मेंद्री हैं। एम आई गोइंग टू साइंटिफिक? इट्स ओके, कैन आई कंटिन्यू? तो हमारे पास पांच कर्मेंद्री हैं, पांच ज्ञानेंद्री हैं, कुल मिला कितने हुए? हमारी मैथमेटिक्स जरा कमजोर है, पांच प्लस पांच दस। लेकिन ये इंद्रियों को काम करना है तो उनको शक्ति चाहिए, उस शक्ति को हम प्राण शक्ति कहते हैं। तो पांच प्राण हमारे अंदर है, पंद्रह। लेकिन इन पांच प्राणों को एक विशेष इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, यंत्र चाहिए, जिससे वो काम कर सके, जिसको तत्व कहते हैं, पांच तत्व। तो पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच प्राण, पांच तत्व, ये हम सबके हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप दिखा सकते हैं जिसको ये बीस नहीं हो, कम ज्यादा हो सकता है इंटेंसिटी में, हो सकता है हमारे जैसे आदमी आग के लिए चश्मा पहनता हो, लेकिन वो इंद्रिय तो है ना। तो ये 20 जीवन के आधार है, सबके पास यूनिफॉर्मली एक है। अगर किसी का हार्ट में कमजोरी है तो डॉक्टर ये थोड़ा नहीं पूछेगा कि तुम कहां पैदा हुए हो, तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सबका हार्ट एक है। उसी तरह ये 20 हो, ऑल दिस 20 और सेम। लेकिन हमारे और आप में क्या अंतर है? करोड़ों आदमी है, क्या अंतर है? केवल हमारे मनो मन बुद्धि चित्त अहंकार में अंतर है ना। इंद्रियों ये 20 तत्व तो हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जैसा हमारा मन कहता है। आप कैसे उपयोग करेंगे? जैसा आपका मन कहता है, जैसा आपका बुद्धि कहता है, जैसा आपका चित्त कहता है, आपका अहंकार कहता है। तो गुरु जी कहते हैं इन 24ों को कैसे उपयोग करना है, वह फॉर्मूला गायत्री है, इसलिए उसमें 24 अक्षर है। उस दृष्टि में हम सीखते नहीं, उन्होंने महाविज्ञान लिखा। अगर किसी के पास गुरुजी का वांग्मय हो तो 7 वॉल्यूम से इतने मोटे मोटे गायत्री के ऊपर। किसी ने वांग्मय किसी के पास है? यू आर हैविंग इट ना? नो, इट इज नॉट हैंड राइजिंग बट ब्रशिंग द हेयर, इट डजंट मैटर, डोंट मिसअंडरस्टैंड, आई एम जस्ट जोकिंग। व्हेन यू गो इनटू द वांग्मय, around more than 1000 to 15000 A4 size pages, 7 volumes he has written about the Gayatri way of life. And you say, no, I don't want this Gayatri. I don't like E is equal to MC squared formula. Upar do likha humko achha nahi lagta, mita denge. Mita do. Mita dene se phir to gadbad ho gaya na, formula galat ho jayega. तो यहां गायत्री मंत्र को आप हिंदू गायत्री मंत्र मत समझिए। जीने की कला बताती है कि आपके पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच प्राण, पांच तत्व, और फिर उसका आपको कैसे उपयोग करता, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका अहंकार, कर तो लिया, समझ तो लिए। हमारी जिंदगी हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है 24 रूपों में। ये 24 का मतलब तो समझ गए ना आप लोग, लेकिन ये बाहर निकलने का टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह हम इसका सही उपयोग करेंगे, वो यज्ञ है। और यज्ञ हमने क्या बना दिया, इट्स ओके, इट इज करेक्ट, इट इज द टेक्नोलॉजी, नो डाउट अबाउट इट, बट यू हैव टू पुट इट इन योर डेली लाइफ। दैट इज वाई जगत गुरु कृष्णा सेज इन गीता, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप इज ऑल्सो ए यज्ञ, गिविंग अदर्स थिंग्स टू अदर्स इज ऑल्सो ए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ तथा परे। लेकिन इन सारे यज्ञों का जो टेक्निकल डेवलपमेंट है वो इस यज्ञ विधान में है। अब हम कैसे कहें कि यज्ञ विधान केवल हिंदुओं का है, इट इज ए टेक्नोलॉजी, ए साइंटिफिक टेक्नोलॉजी ऑफ डेवलपिंग यूवर 20+4, 24। तो ये गुरु जी का मेन एक्सपीरियंस है, किस तरह उन्होंने हमें सिखाया कि किस तरह तुम उपयोग करो। मैं ये क्यों बता रहा हूं कि दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले तो बुलक कार्ट्स होते थे, पैदल जाते थे, लगता तो कोई घोड़े में जाता था, लेकिन अब आपको कहीं भी जाना हो, प्लेन पकड़ा, गायब हो गया आप। ऑफ कोर्स यू नीड वीसा, आई थिंक न्यूजीलैंड पीपल डोंट नीड इट, यू आर लकी इन दैट, फॉर 65 कंट्रीज आई एम आई राइट अबाउट इट, यू डोंट नीड एनी वीसा, यू कैन जस्ट टेक द टिकट एंड गो, सो यू आर रियल यज्ञ पीपल, यू आर ऑलरेडी ऑन द पाथ। सो when I am, what Parampuja Gurudev used to say, you do three things. First, you know what is upasana. You sit near Gayatri. And he used to challenge us that if you sit for 5 minutes before fire, you feel the heat. Is it not? Aisa koi aadmi hai ki aag ke paas baitha aur usko garmi na laga? Aur वहां से उठ के वो जरा बाहर आएगा, कुछ देर के लिए वो गर्मी उसमें रहता है ना? और आप गायत्री के पास बैठे और आपके पांच प्राणों में, पांच तत्वों में, पांच ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया में बढ़ोतरी नहीं हुआ, तो ये कैसी उपासना है? तो इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक विशेष क्या कहें हेल्प दिया उन्होंने। उन्हें कहा तुम्हारे मंत्र के जप से शक्ति जल्दी आने वाली नहीं है और आज का समय जल्दी जल्दी होना है, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम हमारे साथ जप कर, हमारे में यह शक्ति है जिसको वाक में चार लेवल्स होते हैं, आज तो समय नहीं है, वैखरी जो मैं बोल रहा हूं, उसके बाद मध्यमा, पश्यंती और परा। तो गुरु जी ने चैलेंज दिया और गारंटी दिया कि तू हमारे साथ जप कर, हर रोज 108 बार हमारे साथ बोल, उसको हम 1000 गुना बढ़ा देंगे। तो उसका वेबसाइट है, यू जस्ट प्रेजेंट इट। आई रिक्वेस्ट यू टू गेट मोर बेनिफिट्स अबाउट उपासना, यू चांट विथ हिम, बिकॉज ही हैज गारंटीड दैट इफ यू दिस मच ऑफ चांटिंग विथ मी, इट विल बी मल्टीप्लाइड 1000 टाइम्स बिकॉज ऑफ माई पावर। एंड देन ही टोल्ड अबाउट द यज्ञ, एंड इन थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज आई हैव फाउंड that whenever they, I am not telling about any Hinduism, I am talking about the way of life. So this my experience with Guruji, where he has given me a number of experiences where not only I could help myself, I could help others, and if you join this, you also can help others. Anyway, if I continue like that, it continues. Jai Gurudev. Yeah. You can show it, huh? You just show it, just 3 minutes. Sorry,
just we will do once and stop it. ఒక్క మంత్రం చెప్పించు గురుగారు చెప్తారు. Just all of us chant once and stop it. Sit erect and do it. Three times we will chant with him. So, Jai Gurudev. So, yes, you are asking. So, this is how the things go on, but instead of a lecture, I would prefer a three, so that you can practice. Practice and practice instead of hearing. So, next time when I come, I hope we will meet in sadhana camps rather than in lecture camps. Okay? Jai Gurudev. Thank you very much for the offer you have given. I am constrained by time, you know.